जावेद साहब, सबसे पहले जरा ये बताइएगा कि जो रूह है वो क्या है, उसके बाद हम आगे जाएंगे तो फिर देखेंगे कि उसके अंदर मजीद अल्फाज किस किस तरह से इस्तेमाल हुए। रूह है क्या चीज?
आप फोंकते हैं, इसको अरबी ज़बान में नफ़ कहते हैं। मेरी आपकी फोंक के लिए ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ये फोंक जब लतीफ़ हो जाती है तो इसको रूह कहते हैं, यानी लुगत के एतबार से इसका मतलब ये है।
ठीक,
अल्लाह ताला ने तख्लीक का फ़ैसला किया, तख्लीक फरिश्तों की भी हुई है, तख्लीक जिन्नात की भी हुई है, तख्लीक इंसानों की भी हुई है। इसी तरीके से अल्लाह ताला कोई बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कलाम फरमाएंगे, उसमें क्या होगा, मानी लफ्ज़ का जामा पहन लेते हैं। यानी यहाँ एक शख्सियत है इंसान की, एक शख्सियत है फरिश्ते की, एक शख्सियत है जिन की, उसने एक कालब इख्तियार कर लिया। ये आपने कुरान मजीद में पढ़ा होगा ना कि अल्लाह ताला ने पानी और कीचड़ के आमेज़े से इंसान की तख्लीक की पैदा कर दी।
ठीक है।
यानी जिस तरीके से अब हम खाते हैं पीते हैं, उसमें सब्जियां भी होती हैं, गोश्त भी होता है, दाल भी होती है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब हम वो खा लेते हैं तो हमारे अंदर एक फैक्ट्री है जिसमें ये एक प्रोसेस होता है, और उसके नतीजे में एक नुतफ़ा वजूद में आ जाता है, एक औरत में एक पैदा वजूद में आ जाता है, फिर उनके मिलाप से इंसान की तख्लीक की पैदा होती है। तो इब्तिदा में अल्लाह ताला ने ये सारा मामला जो अब माँ के पेट में होता है वो ज़मीन के पेट में किया है। इसमें क्या चीज़ तैयार हुई, इसमें कालब तैयार हुआ है जिसको आप जिस्म कहते हैं। अब इसमें जो असल शख्सियत आनी है, जिसको इंसान की शख्सियत कहते हैं, जिन की शख्सियत कहते हैं या फरिश्ते की शख्सियत कहते हैं, वो खुदा की तरफ से सादिर होनी है।
ठीक है।
यानी ये जो मादी हकायक हैं, आग से आप कहेंगे ना जन्नात पैदा किए गए, तो वो भी असल में उनका कालब तैयार हुआ है इससे, या इंसान को पानी से या कीचड़ से तैयार बनाया गया, तो वो भी कालब तैयार हुआ है, आपका जिस्म तैयार
जिसे
हुआ
हम
है।
हैवानी
या
जिस
फरिश्तों के बारे में अगर आप ये कहेंगे कि वो रोशनी से, तो जाहिर है कि वो मादे की एक किस्म है जिससे उनका
ठीक
कालब तैयार हुआ है। उनकी जो असल हकीकत है, या मेरी जो असल हकीकत है, या एक जिन की असल हकीकत है, वो क्या चीज़ है, वो असल में अल्लाह ताला की तरफ से सादर होने वाला अमर है। कुरान
ठीक
मजीद जो है उसको अमर से ताबीर करता है, उसकी इसके सिवा कोई और ताबीर हो नहीं सकती। तो खुदा का अमर है, खुदा ने एक फैसला किया, उसने इरादा किया कि ये चीज़ हो, और उसके बाद उसने उसका अमर सादर किया। उस अमर के सदूर की कैफियत क्या है खुदा से, वो बिल्कुल ऐसे ही है समझाने के लिए जैसे आप कोई फोंक देते हैं। आपने देखा होगा ना कि बाज़ औक़ात आप किसी को कोई कुरान की आयत पढ़ के फोंक देते हैं, या मसलन हदीस में आता है
दम
कि
कर देंगे।
रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्वज़ातैन पढ़ के फोंक देते थे।
ठीक है
चीज़ आपने देखी हुई ना,
जी।
इसका मतलब यह है कि फोंकना ये दर हकीकत एक रूहानी इंतकाल का अमल है जो होता है। ये कहाँ से आया है, वहीं से आया है। तो वहाँ अल्लाह ताला ये बयान फरमाते हैं कि वो लतीफ़ चीज़ जिसको इंसानी शख्सियत कहते हैं, जब इंसान का कालब तैयार हो गया तो वह हमने फोंक दी। अब ये खुदा का फोंकना ये उमूर मुतशाबिहात में से है, यानी जो करीब तरीन चीज़ हो सकती थी हमें समझाने के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया गया है। उमूर मुतशाबिहात का मतलब ये है कि हम ये अहलियत तो नहीं रखते कि उस चीज़ की हकीकत को समझ सकें। यानी हमारा इल्म क्या है, उसके कुछ हदूद हैं।
ठीक है।
हम असल में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को समझ सकते हैं जिनके नज़ायर हमारे पास मौजूद हों। हमारे इल्म की यह हद है, एक लफ्ज़
सही
में अगर
है,
बयान किया
सही
जाए
है।
तो हम यही कर सकते हैं। इससे हम इस्तिम्बात कर लेते हैं, महसूस से गैर महसूस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास उसके नज़ायर मौजूद हों, वरना हम किसी चीज़ को गिरफ्त में नहीं ले सकते। अच्छा, फिर ये कि जब गिरफ्त में ले भी लेंगे तो उसको दूसरे तक पहुँचाने के लिए अल्फाज चाहिए होंगे। अल्फाज कैसे बनते हैं, अल्फाज या तो इस तरह बनेंगे कि शय वजूद में आ जाएगी तो लफ्ज़ वजूद में आएगा, और या तसव्वुर मौजूद होगा तो वजूद में आएगी।
ठीक।
तो अल्फाज भी हमारे पास मौजूद नहीं होते कि हम इस तरह की चीज़ों को दूसरे तक पहुंचा सकें। तो उन चीज़ों को बयान करने का फिर क्या तरीका है, उनका तरीका यह है कि आप दुनिया की चीज़ों में से जो करीब तरीन चीज़ हो सकती है उससे तशबीह दे के उसको बयान कर दें।
सही।
मैंने इसकी कई मरतबा मिसाल दी है कि अगर आज से 2-3 सदी पहले कोई आदमी ये बताना चाहता है कि ये बिजली के कुम्भ में ईजाद हो जाएंगे, तो उस वक्त बिजली क्या होती है,
तो
बिजली
पता
के
ही नहीं
कुम्भ
चल।
क्यों, तो हो सकता है कि इस तरह बयान करता है कि ऐसे चिराग जलेंगे जिनमें तेल नहीं डालना पड़ेगा, जिनको दिया सलाई नहीं दिखानी पड़ेगी। ये हो सकता है ना,
बिल्कुल ठीक
इस
है।
तरह की ताबीरें हम क्यों इख्तियार करते हैं कि हमारे पास उस चीज़ का कोई मिसदाक नहीं होता, उसके लिए अल्फाज भी नहीं होते, तो हम तशबीह का तरीका इख्तियार करते हैं। तशबीह और इस्तारा भी क्यों वजूद में आया है, यानी कोई चीज़ इतनी लतीफ़ हो गई है कि उसकी मिसाल के तौर पर खूबसूरती को, उसकी बदसूरती को, उसकी कराहत को बयान करने के लिए उस वहाँ अल्फाज मौजूद नहीं है, तो हम कहीं से अल्फाज को मुस्तार लेते हैं। तशबीह भी यही होती है। یعنی اگر آپ نے لبوں کی نزاکت کو بیان کرنا ہے یا حسن کو بیان کرنا ہے یا خوبی کو بیان کرنا ہے یا رنگ کو بیان کرنا ہے تو اس کو آپ سادگی سے اگر بیان کر دیتے ہیں تو جو چیز وہ لطیف احساس جو ان لبوں کو دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے منتقل نہیں ہوتا. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ پھول کی طرف جاتے ہیں, نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی. تو یہاں آپ نے ایک تشبیہ یعنی ایک چیز کو لیا اور پھر مجھ تک وہ بات وہ لطیف احساس پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہ وہ کیا چیز ہے جس کو میں منتقل کرتا ہوں, وہ تو ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے, لیکن یہ بتا دیا کہ اس کے منتقل ہونے کا عمل بالکل کم و بیش ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح تم کوئی چیز پھونک دیتے.
جاوید صاحب, ہم جب سو جاتے ہیں تو روح جو ہے وہ جسم سے الگ ہو جاتی ہے, اور جس کا حکم ہو چکا ہوتا ہے اس کی روک لی جاتی ہے, اس کے لیے روک لی جاتی ہے ورنہ لوٹا دی جاتی ہے. پھر اس کی کیا حقیقت ہے؟
نہیں, اس کے لیے قرآن نے روح کا لفظ نہیں استعمال کیا, کہیں بھی نہیں کیا, اس نے نفس کا لفظ استعمال کیا. یعنی ہمارے اندر جو شخصیت ہے اس کی حقیقت کیا تھی اس کو روح سے تعبیر کیا ہے. وہ جب ہمارے اندر آ گئی تو اب وہ نفس ہے, ہماری شخصیت ہے. تو قرآن اس کے لیے نفس کا لفظ استعمال کرتا ہے, یعنی وہ شخصیت اندر بھی ایک غیر مرئی قالب, ایک انویزیبل قالب اختیار کر چکی ہے.
تو گویا نفس اور روح میں فرق ہے.
روح تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے صدور کو بیان کرنے کے لیے ہے, یعنی اللہ کی طرف سے جب وہ بات صادر ہوئی تو وہ ایک لطیف پھونک کی صورت میں تھی.
ٹھیک ہے,
اس کو بیان کیا جاتا ہے. وہ ہمارے اندر آ کے ایک شخصیت کی شکل اختیار کر گئی, اب اس کے لیے نفس کا لفظ ہے. اور یہ نفس کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ ہمارے جسم میں پایا جاتا ہے. یہ اس کا قالب ہے, یہ اس کا لباس ہے, یہ اس کا جامع ہے. اور پھر نفس اور اس قالب کے ساتھ مل کے وہ چیز ہے جس کو آپ انسان کہتے ہیں.